तफसीर सूरतुल आराफ। इसके 24 रुकू, 206 आयात, 206 आयात, जबकि अल्फाज और कलिमात की तादाद 3387, 3387 हुरूफ, लेटर की तादाद 14635, 14635। ये मक्की सूरत है। इस सूरत का नाम आराफ, इसकी आयात 46 और 47, 46-47 से लिया गया है। आराफ उर्फ की जमा है। ऊंचे पहाड़ और टीले, उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई ऊंची चीज है, और वैसे भी ऐन राफा घोड़े की पेशानी की चोटी को कहते हैं और मुर्ग की कलगी को। अब आप देखें कि घोड़े की पेशानी की चोटी नुमाया होती है और मुर्ग की कलगी जो है वो भी नुमाया होती है, तो यहीं से ये लफ्ज किसी मीनारे या बुर्जी, किसी ऊंची दीवार, पहाड़ी, उसके अतराफ और जवानब उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सूरत का मरकजी मजमून दावते रिसालत है। इस सूरत में लोगों को अल्लाह के रसूलों की पैरवी इख्तियार करने की दावत दी गई है, और दावत में डरावे का रंग ज्यादा नुमाया नजर आता है, क्योंकि अहले मक्का को समझाते समझाते एक मुद्दत गुजर चुकी थी और वो इनकार कर रहे थे। अबू दाऊद और नसाई की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की 2 रक्तों में सूरत अल आराफ पढ़ा करते थे। 8 आयतों के अलावा पूरी सूरत मक्की है। 8 आयात के बारे में कहा जाता है कि वो मदनी है। आयत नंबर 163 से आयत 171 तक। अलिफ लाम मीम स्वाद, ये हरूफे मुकत्तात हैं। इसके माने अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, किताबुन उन्जिला इलैका, ये एक किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई। यहाँ पे किताब से मुराद सूरत अल आराफ है। जब सूरत के आगाज में किताब का लफ्ज आता है तो उससे मुराद जो है वो बिलअमूम वो सूरत मुराद ली जाती है। ये किताब, ये सूरत उन्जिला इलैका, नाजिल की गई आपकी तरफ। का की जमीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरत आपकी तरफ उतारी गई है। फला यकुन फी सदरी का हरजुन, पस ना हो। काफ वो नून जो है रूट है और इसके मानी है होना, इसी से काना, यकुनु, कुन, ये सारे अल्फाज इसकी फैमिली के हैं, और यकुन ना हो। वैसे इसके लुगत के एतबार से मानी था के होते हैं, लेकिन ये है के मानी भी देता है, और यहाँ पे चूंकि पहले ला आ गया है तो फला यकुन पस ना हो फी सदरी का, तेरे दिल में। यहाँ पे सदर जो है ये दिल के लिए इस्तेमाल हुआ है, वैसे इसके मानी सीने के हैं, और सीने के अंदर चूंकि दिल होता है तो कहा कि तेरे दिल में ना हो हरा जुन, हरज कहते हैं तंगी को, कि तेरे दिल में तंगी नहीं होनी चाहिए। असल में अरबी जबान में हरज हाराजीम उस घनी झाड़ी को कहते हैं जिससे गुजरना मुश्किल हो। दिल में हरज होने के मानी ये हैं कि मुखालफतें हो रही हैं, मजामतें हो रही हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके दरमियान अपना रास्ता साफ ना पाकर आपका दिल आगे बढ़ने से रुक जाए, आपका दिल तंग हो, आप परेशान हो। फरमाया कि आपकी तरफ जो कुरान नाजिल किया गया ये अल्लाह की किताब है जो आपकी तरफ भेजी गई है, और इसकी वजह से आपका दिल तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल की तंगी से मुराद क्या है कि कुरान मजीद और इसके अहकाम की तबलीग में आपको कोई खौफ जो है वो नहीं होना चाहिए कि लोग झुठला देंगे, लोग कबूल नहीं करेंगे, या ये कि आपको सताएंगे। और वैसे भी कुरान सुनकर लोग इस्लाम कबूल नहीं करते थे, बहुत थोड़े लोग थे जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था, और ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर बहुत जो थी वो बोझल होती थी, आप बहुत परेशान होते थे। आयत नंबर 1 से लेकर 9 तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसल्ली दी है कि तुम्हारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि ये जो अल्लाह का कलाम है इसे आप लोगों तक पहुंचा दें। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि लोग उसको कबूल भी कर लें, लोग जरूर ही ईमान ले आए। तो आयत 1 से 9 तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और हरज का लफ्ज इस्तेमाल करके कहा कि ए मोहम्मद, आप परेशान ना हो, आप जो है वो दीक में मुब्तिला ना हो, अहले मक्का मुखालफत करेंगे, आपको जिज करेंगे, और आपका काम क्या है कि फला यकुन फी सदरी का हरज मिनहु, कि तुम्हारे दिल में इस कुरान मजीद का जो पैगाम दूसरों को पहुंचाना है या इसकी जो तबलीग का फर्ज आपके जिम्मे है, आप इस वजह से परेशान ना हो। आपको करना क्या है, ये तुन जरा बही, कि आप इसके जरिए से लोगों को डराएं, ये तुन जरा बही। तो नजीर के मानी होते हैं कि मोहब्बत से डराना, रहमत और शफकत से डराना। एक होता है चोर और डाकू का डराना और एक होता है पैगंबर का डराना। तो नजीर ऐसे डराने को कहते हैं जिसमें मोहब्बत हो, शफकत हो, हमदर्दी हो। लेतुन जरा बही, इस कुरान के जरिए, इसकी आयात के जरिए आप लोगों को डराएं। वज़िक्रा लिल्मुमिनीन, ज़िक्रा, ज़िक्रा जो है इसके मानी है कि नसीहत हो, लिल्मुमिनीन ईमान लाने वालों के लिए। तो आपका फर्ज क्या है कि लोगों के रिस्पॉन्स से और उनके जो है वो कि वो झुठलाते हैं या ईमान लाते हैं उससे बेनियाज होकर, बस आपका काम जो है वो इंजार है, इबलाग है। और जिक्रा के मानी क्या है कि ये नसीहत होगी ईमान लाने वालों के लिए। फिर फरमाया इत्तबिऊ, पैरवी करो, मा उन्जिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, उस चीज की जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया। मा उन्जिला में कुरान और हदीस दोनों आ जाते हैं, वही मतलू और गैर मतलू दोनों मुराद हैं। तो लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया इसकी पैरवी करो, क्योंकि यहाँ पे इत्ता बे नहीं आया, अगर इत्ता बे आता तो एक को कहा जाता, लेकिन इत्ता बे तुम सब पैरवी करो जो अल्लाह की तरफ से जो है वो नाजिल किया गया। इससे वही मतलू और गैर मतलू दोनों मुराद हैं। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो। वला तत्तबिउ, और पीछे मत चलो और मत पैरवी करो, मिन दूनिही, इसके सिवा, किसके सिवा, अल्लाह के सिवा। दून जो है वो हट, ये जवील अजदाद में से है, हटकर छोड़कर सवाए ही की जमीर जो है वो अल्लाह के लिए आई है कि रब को छोड़कर दूसरों की पैरवी ना करो। औलिया वली की जमा है। पुराने जमाने में लोग सरदार, नजूमी, उनकी पैरवी करते थे। और क्या करते थे कि जो कुछ वो हलाल हराम जो है वो बताते थे तो उनको सनद के तौर पर तस्लीम करते थे। अब बताया जा रहा है कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों की पैरवी मत करो। तो आज के दौर में किसकी पैरवी की जाती है? नफ्स की पैरवी, रस्म और रवाज की, पीयर प्रेशर की, दोस्तों की, जमाने की। तो सबसे कहा जा रहा है कि कुरान और हदीस की पैरवी करो। कलीलम्मा तज़क्करून, मगर तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो। करना क्या चाहिए कि नसीहत को कबूल किया जाए, लेकिन हाल ये है कि कम नसीहत कबूल करते हो। ऐसे शामित ज्यादा हो कि मुश्किल ही से याद दहानी जो है वो हासिल करते हो। वकम मिन करियतिन, और कितनी ही बस्तियां हैं। फरमाया वकम मिन करियतिन, और कितनी ही बस्तियां हैं। करिया का लफ्ज जो है किसी बस्ती शहर के लिए भी आता है, और जो लोग उसके अंदर रहते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और कितनी ही बस्तियां हैं, और एक बस्ती नहीं, कितनी ही बस्तियां हैं। अहलकनाहा, तबाह कर दिया हमने उनको। फजा फजा, पस आया इन पर क्या चीज आई? बासुना, अजाब हमारा। बयातन, रात को सोते हुए। औहुम काइलून, या जब वो दोपहर को कैलूला कर रहे थे। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि अहले मक्का को डराया जा रहा है। अहले मक्का क्या कर रहे थे? रसूल का इनकार कर रहे थे। तो फरमाया कि तुमसे पहले कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने उनको तबाहो बर्बाद किया। और कब तबाहो बर्बाद किया? बिल्कुल अचानक अचानक उन पर हमारा अजाब आया। फजाअहा, बस आया उन पर। बासुना, अजाब हमारा। बयातन, बयात जो है बा या ते, ये घर को कहते हैं। और बाता या बीतू का मतलब होता है, क्योंकि रात के वक्त सब लोग घर होते हैं ना, और रात में आ पड़ना, दुश्मन पर हमला करना। तो रात के वक्त जो है इन पर हमारा अजाब आया, कुफर करने वालों पर। औ हुम, या जब वो कायलून कैलूला कर रहे थे। कायलून जो है इसके माने क्या है? कैलूला करना, आराम करना, कील, किलो काल। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लेटे हुए हैं लोग और आराम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो फरमाया कि जब लोग जो थे वो किलो काल कर रहे थे। काफ या लाम इसका रूट है कि वो आराम कर रहे थे। और दोपहर को कैलूले के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब आप देखें कि रात के वक्त कोई सो रहा हो या दोपहर के वक्त कोई कैलूला कर रहा हो, तो ये दोनों औकात ऐसे हैं कि बेखबरी में जो है वो सोया जाता है। मुराद क्या है कि हमारा अजाब ऐसे अचानक अचानक वक्त में उन पर आया जब वो आराम और राहत के लिए बेखबर अपने बिस्तरों पर सोए हुए थे। फमा काना दावाहुम, पस ना था उनका दावा, पस ना था उनका पुकारना। दावा जो है इसके माने यहाँ पे क्या है कि उनका सदा लगाना, आवाज देना। तो बस वो नहीं पुकारते थे। इज जाअहुम बासुना, जब आया उन पर हमारा अजाब। इल्ला मगर, अन कालू इन्ना कुन्ना जालिमीन, मगर वो ये कह रहे थे कि बेशक हम जालिम थे, बेशक हम गुनाहगार थे। और जालिम से मुराद क्या है कि हमने रसूल का कहना ना माना, हमने एक अल्लाह की बंदगी ना की, हमने गुनाह किए। अब अजाब आने आने के बाद उन्होंने एतराफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जब अजाब आ गया तो वो एतराफ करने लगे। अन कालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कि वाकई हम जालिम थे। और जब अजाब आता है और कोई एतराफ करता है तो उस वक्त उसका एतराफ करना जो है उसे कोई फायदा नहीं देता सवाए हसरत के, सवाए नदामत और पशेमानी के। क्योंकि सूरत अल मोमिन आयत 85, फलम यकु यनफाउहुम ईमानुहुम लम्मा राउ बासना, जब उन्होंने हमारा अजाब देखा तो उस वक्त इनका ईमान इनके लिए नफा मंद ना हुआ। तो इसी तरह जो पहली कौमें थी, कितनी ही बस्तियां थी कि पहले उन्होंने इनकार किया और जब उन पर अल्लाह का अजाब आया तब उन्होंने जो है वो अफसोस जाहिर किया, अपनी गलती का इकरार किया। लेकिन उनकी जो गलती थी, उनका जो इकरार था, उनका जो हसरत करना था, वो उनके लिए कुछ भी फायदामंद साबित ना हुआ। तो ये जो बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कही है कि उनका अजाब, उनका जो इकरार करना था कि हम जालिम हैं, तो इसके मानी दरअसल क्या है कि तलाफी का वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई होश में आता है, अपनी गलती का एतराफ करता है, इकरार करता है, तो उससे उसको कुछ फायदा नहीं होता। तो कौमों की जिंदगी में, बस्तियों की और अफराद की जिंदगी में जो है वो एक ही मौका मिलता है कि लोग समझ जाए कि जिंदगी एक ही है। और जो अगली आयत है इसमें जो है वो बड़ी ही सख्त बात है, फरमाया فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ ذرا غور کریں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ، بس ہم ضرور بہ ضرور سوال کریں گے، بس ہم ضرور بہ ضرور پوچھیں گے۔ تو سالہ کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، اور لام لام تاکید ہے، فا کے بعد جو لام ہے اور نون پر جو شد ہے یہ بھی تاکید کے لیے آئی ہے، دو تاکیدیں جمع ہو گئیں۔ بس یہ ضرور ہونا ہے کہ ہم ان کا محاسبہ کریں، ہم ان سے باز پرس کریں، کن لوگوں سے، الذین ارسل الیہم، وہ لوگ جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے تھے، ایک طرف جن کی طرف جو ہے وہ رسول بھیجے گئے تھے، تو ان کی طرف جو ہے جب رسول بھیج دیے گئے تو ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ کیا تم جو ہے تم رسولوں پر ایمان لائے تھے، تم نے رسولوں کی دعوت کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہاں پہ بھی لام لام تاکید ہے اور نون جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے، اور ہم ضرور بہ ضرور پوچھیں گے، المرسلین بھیجے گئےوں کو، پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام جو تھا وہ لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ اور یہی بات جو ہے آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں نا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا سورۃ المائدہ کے اختتام پر، کہ کیا تو نے اور تیری والدہ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے وہ خدائی میں شامل کر لیں۔ تو اس طرح جو ہے ایک طرف امتوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس جب پیغمبر آئے تھے تو انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا، وہ جواب دیں گے کہ ہاں انہوں نے جو ہے وہ اے اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام جب اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا تو انہوں نے اس پیغام کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا، پھر پیغمبر اس سوال کا جواب دیں گے۔ تو ایک طرف یہ کہ قومیں جو ہیں انہوں نے پیغام کو پا کر کیا رویہ اختیار کیا، دوسری طرف جو ہے وہ رسول جو ہے انہوں نے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، اور یہ معاملہ بڑا ہی سخت معاملہ ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ تلاوت کی فرمائش کی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ میں آپ کو تلاوت سناؤں، मैं आपको कुरान सुनाऊं जबकि आप पर कुरान जो है वो नाजिल हुआ, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। और उन्होंने सूरत निसा की तिलावत शुरू की और जब वो इस आयत पर पहुंचे कि फकैफा इज़ा जेना बिकुल उम्मतिम बिशहीद, फकैफा इज़ा जेना मिन कुल उम्मतिम बिशहीद व जेना बिका अला हाउलाई शहीदा, सूरत अन्निसा आयत 41, भला उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से गवाह लाएंगे फिर इन पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गवाह बना देंगे। और जब इस आयत पर पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद बस करो, अब्दुल्ला बिन मसूद बस करो। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह कहते हैं मैंने देखा उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो आप देख लें कि रसूलों से भी पूछा जाएगा और फिर जो है वो कौमों से भी पूछा जाएगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर लोगों से कहा था कि ऐ लोगों, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? और लोगों ने बावाज़े बुलंद कहा कि हाँ। तो आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा कि अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, तीन दफा कहा कि अल्लाह तू गवाह रहना। फिर आपने लोगों से कहा कि अब ये मैं तुम्हारे पास जो है वो कुरान और सुन्नत दो चीजें छोड़ रहा हूं, तो तुम में से जो यहाँ मौजूद है वो उन तक पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो अब ये पैगाम हम तक पहुंच चुका है और हमसे भी पूछा जाएगा कि कुरान मिलने के बाद, रसूल का पैगाम मिलने के बाद फिर तुमने क्या किया? फरमाया फलानुकुस्वन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन, फलानुकुस्वन्ना, बस हम बयान करेंगे। और इसके माने क्या है? जैसे क़ाफ़ स्वाद स्वाद जो है वो किस्सा गोई करना, बात बयान करना। फरमाया फिर हम बयान करेंगे अलैहिम इनको बिइल्मिन अपने इल्म के साथ, वमा कुन्ना गाइबीन, और हम कहीं गायब तो नहीं थे, ऐसा नहीं था कि हम कुछ बेखबर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास हर जाहिर और पोशीदा बात का इल्म है कि उम्मतों ने क्या किया, पैगम्बरों ने क्या किया। फिर इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उम्मतों और पैगम्बरों के सामने हम सारी बातें बयान किए करेंगे, जो कुछ उन्होंने किया होगा सारा कुछ उनके सामने खोल खोल कर रख दिया जाएगा। वमा कुन्ना गाइबीन, हम उस वक्त कहीं गायब तो नहीं थे। इसके माने क्या हैं? इसके माने ये हैं कि मेरा इल्म जो है वो एक मुकम्मल इल्म है और गायब नहीं थे से इससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है, फरिश्ते जो है वो नामाए अमाल जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि उस वक्त हम कहीं गायब थे, बल्कि क्या है कि उस वक्त जो है वो दुनिया में जब लोग जो कुछ कर रहे थे तो हम सब कुछ जानते थे। तू अल्लाह अलीम है, खबीर है, बसीर है, समी है, हसीब है। वमा कुन्ना गाइबीन, आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे। ये आयात बहुत ही डराने वाली हैं। वल वज़्नु यौमैज़िन अल-हक, और वजन उस रोज एन हक होगा। वल वज़्नु, और वजन जो है तोलना, यौमैज़िन क़यामत के दिन, अल-हक हक होगा। इसके माने ये हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा और जो है वो तोला जाएगा तो क्या होगा कि वजन उसी का होगा अगर किसी ने जो है वो हक किया होगा, और जो हक होगा उसी का वजन होगा। इसके मानी क्या है कि मेजाने अदल में वजन और हक दोनों हम मानी होंगे, हक के सिवा कोई चीज वजनी नहीं होगी और वजन के सिवा कोई चीज हक नहीं होगी। तो जिस चीज के साथ जितना हक होगा उतना ही वो वजन होगा। यही मजमून जो है हमें कुरान में और जगह पर भी मिलता है। आप लोग भी ये पढ़ चुकी हैं कि जैसे फमै यअमल मिसकाल जर्रतिन खैरन यरा वमै यअमल मिसकाल जर्रतिन शर्रन यरा। इसका मतलब क्या है कि जिस शख्स ने एक जर्रा के बराबर भी कोई नेकी की होगी तो कयामत में उसको देखेगा, और एक जर्रा के बराबर बुराई की होगी तो कयामत के दिन जो है वो उसको देखेगा। फिर इसी तरह सूरत अलकारिया में फअम्मा मन थकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशतिर राधिया वअम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि जो है वो अमाल का वजन जो है वो कैसे किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर जो है ये ख्याल किया जाता है कि अमाल जो है वो कैसे हम वजन होंगे, क्योंकि उनका कोई जाहिरी वजूद नहीं है, कोई जिस्म नहीं है, तो कैसे अमाल तोले जाएंगे। इस बारे में एक राय तो ये है कि अल्लाह ताला कयामत वाले दिन इनको जिस्म में अजसाम में तब्दील कर देंगे और इनका वजन होगा। दूसरी राय ये है कि वो सहीफे और रजिस्टर तोले जाएंगे जिनमें इंसान के अमाल दर्ज होंगे। तीसरी राय ये है कि खुद साहिबे अमल को तोला जाएगा। और ये जो तीनों राय हैं, तीनों की दलील में सही अहदीस और आसार मौजूद हैं। तीनों बातें ही सही हो सकती हैं। मुमकिन है कभी अमाल, कभी सहीफे और कभी साहिब अमल को तोला जाए। इस सिलसिले में हमें जो है वो अहदीस भी मिलती हैं। जैसे आप देखें कि मैदाने हशर में इंसान के अमाले स्वाहले इसकी सवारी बन जाएंगे और बुरे अमाल बोझ बनकर इसके सर पर ला दे जाएंगे। आपने ये हदीस भी सुनी है ना, पीछे पड़ी थी कि सूरत अल बकरा और सूरत आल इमरान मैदाने हशर में दो गहरे बादलों की शक्ल में आकर उन लोगों पर साया करेंगी जो इन सूरतों को पढ़ने वाले थे। फिर आपने जो है वो भी पढ़ा आपने कि जिसने माल की जकात अदा नहीं की वो माल एक जहरीले सांप की शक्ल में इसकी कब्र में पहुंचकर उसको डसेगा। फिर पुल सिरात पर उसकी जो कुर्बानी है वो सवारी बन जाएगी। तो ऐसी अहदीस जो है वो हमें मिलती हैं। और वैसे भी अगर आप गौर करें तो आजकल के जमाने में वजन तोलने के नए नए आलात इजाद हो चुके हैं। ना तो तराजू की जरूरत है ना पल्लों की। जैसे ये गांव से देहाती लोग जो हैं वो गन्ने के ट्रक और ट्रालर भर कर लाते हैं, या अपनी सब्जियां या फसल जब लेकर आते हैं तो ट्रक समेत जो है वो ऐसे अब आलात इजाद हो चुके हैं कि पूरा का पूरा ट्रक जो है वो तोल दिया जाता है। या फिर आजकल के हालात में आप देखें कि बारिश होती है तो बारिश जो है उसको भी तोला जाता है। बिजली, हवा, सर्दी और गर्मी के कितना टेम्परेचर है, या जो है बर्फ गिरी है तो कितनी आइस जो है वो कितनी स्नो हुई है। तो क्या है कि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि ऐसी चीजें जैसे हवा है वो तो नजर भी नहीं आती, उसका पता चलता है कि आंधी की रफ्तार क्या थी। बारिश है, अब देखें कि बारिश को जो है उसको भी तोला जाता है। इसी तरह सर्दी और गर्मी जो हम सिर्फ महसूस करते हैं लेकिन इसको भी तोला जाता है। तो अगर आज के दौर में इंसान जो है वो तरक्की करके ऐसे काम कर सकता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो कुदरत है उसके लिए कोई चीज भी बईद नहीं कि वो हमारे आमाल जो है उसको तोले, क्यों वो हमारा खालिक है, वो हाकिम है और वो जो चाहे और जिस तरह चाहे जो है वो करे। और यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक, और वजन उस रोज ऐन हक होगा। फमन थकुलत मवाज़ीनुहु फऊलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे। तो फलाह कौन पाएंगे, कामयाब कौन होंगे, जिनकी नेकियों का वजन जो है वो भारी होगा। वमन खफत मवाजीनहू, खा फा फा हल्का होना, खफीफ हल्का, और जिनके वजन जो है वो हल्के होंगे। फउलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, ये वही लोग हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला। बिमा कानू बी आयातीना यज़लिमून, इस बात पर कि वो हमारी आयात के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार करते रहे। तो यज़लिमून जो है इसके मानी क्या है कि उन्होंने आयात का इनकार किया, उन्होंने शिर्क किया, उन्होंने कभी इस बात पर यकीन ही नहीं किया था कि मरने के बाद जो है दूसरी जिंदगी होगी जहां पे हिसाब किताब होगा, तो इसलिए वो लोग जो है वो खसारे में पड़ गए। इससे क्या बात पता चलती है, ये सारी आयात जो हैं वो एक पैगाम देती हैं कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। फिर आयत नंबर 10 से लेकर 25 तक कुरैश को तंबीह है, डरावा है कि ये मुल्क जिसमें तुम्हें इक्तदार हासिल हुआ ये अल्लाह का बख्शा है, उसने तुम्हारे लिए मुआश और मईशत की राहें फराख की हैं, तो तुम्हें अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए ना कि शैतान की, कि तुम जो है वो शैतान के पीछे जो है वो चल पड़े हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाकया भी सुनाया है, वो वाकया जो आप सूरत अल बकरा में पहले पढ़ चुकी हैं। फलकद खलकनाकुम, और तहकीक फलकद मक्कनाकुम, और तहकीक हमने तुम्हें बसाया। मक्कनाकुम मीम काफ नून, इसके मानी है इक्तदार देना, इख्तियार देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं कि हमने तुम्हें इक्तदार दिया, हमने तुम्हें इख्तियार दिया, किन्हें? अहले मक्का से कहा जा रहा है, फिल अर्दी जमीन में। और जमीन से मुराद वैसे तो अर्द का लफ्ज आम है, लेकिन चूंकि खिताब कुरैश से है तो इसलिए यहाँ पे सरजमीन हरम मुराद है। कुरैश को सरजमीन हरम में इख्तियार इक्तदार हासिल था, हमने तुम्हें हरम में इक्तदार दिया, इख्तियार दिए। वजअलना लकुम फीहा मआयिश, और जो है वो बना दिए तुम्हारे लिए इसमें समाने जीस्त। मआयिश जो है इसका रूट है ऐन याशीन, ऐश मईशत वाहिद है और जमा है माइश, और इसके मानी होते हैं कि जिंदगी का सामान, कि हमने तुम्हें जिंदगी का सामान अता किया। यहाँ पे मुआशी सहूलतों और बरकतों की तरफ इशारा है, क्योंकि मक्का की वादी जहाँ पे फसल नहीं होती थी, पानी नहीं था और बंजर जमीन थी, रेत थी, पत्थर थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है कुरैश वालों को माशी सहूलतों से नवाजा, तरह तरह की बरकतें और नेमतें जो हैं वो उन्हें हासिल हुई, और दुनिया भर से फल उनके पास खींचे चले आते थे। वजअलना लकुम फीहा मआयिश कलीलम्मा तशकुरून, मगर तुम लोग कम ही शुक्र अदा करते हो। तो शुक्र अदा करने के मानी क्या है कि जिस रब ने इतना कुछ दिया, इतनी नेमतों से नवाजा, तो उसकी बंदगी करनी चाहिए थी, उसकी अताअत करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस कि लोगों ने क्या किया कि अताअत करने की बजाय जो है वो नाफरमानी का रवैया जो है इख्तियार कर लिया। अब इसके बाद जो है यहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाकया शुरू होता है। सूरत बकरा के चौथे रुकू में आप पढ़ चुकी हैं, दोबारा इसे पढ़ते हैं। वलकद खलकनाकुम तुम्मा सव्वरनाकुम, हमने तुम्हारी तखलीक की इब्तदा की, हमने तुमको पैदा किया। वैसे आप देखें कि कुम जमा का सिगा है, लेकिन यहाँ इसे मुराद है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि पूरे इंसानों की जो का सिलसिला जो चला तो इब्तदा हजरत आदम अलैहि सलाम से हुई। उनकी जमीर जमा की है लेकिन मुराद अबुल बशर हजरत आदम अलैहि सलाम है। सुम्मा सव्वर नाकुम, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई। स्वाद वोरा इसके मानी है जैसे तस्वीरगरी करना, खूबसूरत शक्ल देना, फिर तुम्हें जो है वो तुम्हारी सूरतें बनाई। सुम्मा कुलना लिल मलाइकती, फिर हमने फरिश्तों से कहा उस जुदूल आदम आदम को सजदा करो। और ये जो सजदा करने का जो हुक्म दिया गया तो ये सजदा दरअसल अल्लाह के हुक्म को सजदा था कि अल्लाह ताला ने कहा कि आदम को सजदा करो। इसके मानी क्या है कि जो सजदा करवाया गया वो ऐसा नहीं था कि जो है जो कि सजदाए इबादत होता है, बल्कि सजदाए ताजीमी था और ये अल्लाह के हुक्म को सजदा था। फसजदू इल्ला इबलीस, इस हुक्म पर सबने सजदा किया मगर इबलीस ने इनकार किया। इबलीस जो है बा लाम सीन बला सा और इंतहाई मायूस को कहते हैं। तो इबलीस ने इनकार किया, किस चीज से इनकार किया? अल्लाह ने जो हुक्म दिया था कि सजदा करो तो उसने सजदा करने से जो है वो इनकार कर दिया। लम यकुम मिन साजिदीन, और वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। तो बाकी जितने फरिश्ते थे उन्होंने सजदा कर लिया और इबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इबलीस जिन्नों में से था और इबादत करके वो फरिश्तों के साथ जो है वो मिल चुका था। और अब चूंकि वो आसमान पर फरिश्तों के साथ रह रहा था इसलिए जब फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया तो ये भी फिर शामिल था कि ये भी सजदा करे। सबने सजदा किया लेकिन इबलीस ने ना किया। काला मा मना का, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा तुझे किसने मना किया? अल्लाह तस्जुदा इद अमरतुक, अल्लाह जो है इसके मानी क्या है कि तू ना सजदा करे। इद अमरतुक, जब तुझे हुक्म दिया गया, कि तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था। अल्लाह जो है, बाज कहते हैं कि यहाँ पे लाम जायद है और यहाँ पे अल्लाह जो है ये अन के मानी में है कि कौला मा मना का, कि तुझे किसने मना किया। तो अल्लाह के मानी क्या है? अन तस्जुदा, कि तू सजदा करता। इज अमरतु, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। अमरतु जो है मैंने हुक्म दिया। कौला अना खैरुम मिनहु, इबलीस बोला कि मैं इससे बेहतर हूं। खैरुन जो है ये सम तफसील है, इसके मानी होते हैं ज्यादा अच्छा होना, बेहतर होना। खलकतनी मिन नारिम व खलकतहू मिन तीन, कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इंसान को तीन मट्टी से पैदा किया। अब वो बता रहा है कि मैं कैसे बेहतर हूं, कि मुझे तो आग से जो है वो पैदा किया और इसे जो है वो मट्टी से बनाया। अब आप देखें कि वो कहता है चूंकि मैं आग से पैदा हुआ हूं इसलिए मैं इंसान से बेहतर हूं क्योंकि इंसान मट्टी से बना है। अब आग मट्टी से किस तरह बेहतर है? आग में सवाए तेजी भड़कने और जलाने के क्या है, जबकि मट्टी में सुकून है, सबात है, नबात, नमू, ज्याति, इसलाह की सलाहियत है। मुफस्सरीन कहते हैं कि उसकी दलील ये थी कि मट्टी से आग बेहतर है क्योंकि आग ऊपर को उठती है, मट्टी नीचे को गिरती है। लेकिन जो आग की सिफात हैं उनकी निस्बत मट्टी की सिफात ज्यादा मुफीद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि आपने फरमाया फरिश्ते नूर से, इबलीस आग की लपट से और आदम अलैहि सलाम मट्टी से पैदा किए गए। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। क़ाल फ़हबित मिन्हा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अच्छा तू नीचे उतर यहां से। क्या कहा? कि तू यहां से नीचे उतर जा। हाँ बा तोए जो है इसका रूट है आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि पस तू उतर मिन्हा इस जगह से फमा यकूनु लका अंत तकबरा फीहा फखरुज इन्नका मिन सागिरीन। फमा यकूनु लका पस तुझे हक नहीं है अंत तकबरा फीहा कि तू यहाँ पे घुमंड करे, तेरे लायक नहीं है ये बात कि तू तकबुर करे। फखरुज पस निकल जा इन्नका मिन सागिरीन बेशक तू जो है वो सागिरीन में से है, बेशक तू जलीलों में से है। अब आप देखिए कि सागिरीन जो है सागिर वाहिद है और सागिरीन इसकी जमा है। और इसके मानी होते हैं जैसे सगीर नहीं होता, सगीर छोटे को कहते हैं, कबीर बड़े को कहते हैं, तो सिगर छोटा और किबर बड़ा, तो बाला तरी से नीचे उतरना महकूम बनना, नीचे उतरना महकूम बनना और उसका इकरार करना, उसके लिए ये सागिर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सागरीन के फिर मानी क्या है कि नीचे उतरना, जिल्लत इख्तियार करना, जलील होना, बेइज्जत होना और फिर उसका इकरार भी करना कि हाँ मैं जलीलों में से हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको किबर इख्तियार करने की वजह से ये सजा दी कि फरमाया कि तू इस जगह से नीचे उतर जा मिनहा, कौल फाहबिक मिनहा। मिनहा के बारे में मुफस्सरीन की दो राय है, एक तो ये कि जन्नत में से नीचे चला जा और दूसरा ये कि मलकूत आला में जो उसको एक आला मकाम हासिल था, जो फरिश्तों के साथ रहकर जो इसको एक आला मकाम हासिल था, तो उसे ये कहा गया कि तू यहां से जो है वो नीचे उतर जा। इससे क्या बात पता चलती है कि उसको क्यों नीचे उतारा गया, उसकी वजह थी उसका किब्र, उसका तकब्बुर, क्योंकि उसको जो है वो एक घमंड था, उसको एक मान था कि मैं आग से बना हूं और मुझे ये क्यों हुक्म दिया गया है कि मैं जो है वो इंसान को सजदा करूं, कि अल्लाह ने इंसान को शैतान पर क्यों तरजीह दी, तो इस वजह से वो नाराज हो गया। और उसके साथ ही उसने अल्लाह से कहा अनजिरनी, काला अनजिरनी कि मुझे मोहलत दे इला यौम युबअसून, उस दिन तक जब ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। बासा यबसू का मतलब होता है उठाना, खड़ा करना, तो युबअसून जब उठाए जाएंगे। काला इन्नका मिनल मुनजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अच्छा तुझे मोहलत हासिल है, तुझे मोहलत दी गई। काला फबीमा अगवैतनी, इस पर वो बोला फबीमा पस जिस तरह अगवैतनी गुमराह किया मुझे। गैन वो या जो है इसका रूट है और इसके मानी होते हैं बहकना, बहकना, और अगवा के मानी होता है बहकाना, और गैया ये जहन्नुम का एक नाम भी है। फबिमा अगवैतनी पस जिस तरह जो है वो मुझे अगवा किया, मुझे गुमराह किया, लअक़उदन्ना जरूर ब जरूर मैं बैठूंगा। लाम लामे ताकीद है और नून भी ताकीद के लिए आया है और काफ ऐन दाल इसका रूट है कि जैसे कादे में नहीं बैठना, तो कहा कि मैं जो है मैं जरूर ब जरूर बैठूंगा लहुम बनी आदम के लिए, इंसानों के लिए, सिराती कल मुस्तकीम, सिराता कल मुस्तकीम, रास्ते तेरे सीधे पर। फरमाया कि अब मैं भी तेरी सीधी राह पर जो है वो इन इंसानों की घात में बैठूंगा, तो सिराते कल मुस्तकीम جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو کہ سیدھا راستہ ہے، تو کہا کہ سیدھے راستے پر جو ہے میں بیٹھوں گا، اور کیوں بیٹھوں گا؟ تاکہ انہیں جو ہے وہ گمراہ کر سکوں. اور صراط مستقیم سے مراد توحید کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ، کیونکہ شرک کا راستہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا میڑا ہے، ادھر ادھر کا راستہ ہے، لیکن جو صراط مستقیم ہے وہ سیدھا راستہ توحید کا راستہ ہے. تو توحید کا جو راستہ ہے اس پر میں بیٹھوں گا. ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان تک، ضرور بضرور آؤں گا ان تک. لام لام تاکید ہے، نون بھی تاکید کے لیے آیا ہے کہ پھر میں ضرور بضرور جو ہے وہ آؤں گا ان کے پاس. من بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے آگے سے، یعنی سامنے کی طرف سے، آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں طرف سے. ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو شیطان نے کہا کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اب یہاں پہ جو ہے شیطان کے حملے کی قوت، وسعت، ہماگیری، خود اپنی زبان سے وہ اس کا جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہر جہت، ہر سمت، ہر پہلو سے انسان پر حملہ کروں گا. اس کے مشاہدات، احساسات، جذبات، خواہشات، ہر طرف سے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کروں گا. اس کی فکروں کو جو ہے وہ توحید سے ہٹاؤں گا، اس کی سوچوں کو جو ہے نا شکراپن دوں گا، اس کا فلسفہ، علم، ہر چیز میں جو ہے وہ نافرمانی کے جو جراثیم ہیں میں وہ ڈالوں گا. اس کی تحقیق، اس کی تصنیف، تالیف، ادب، آرٹ، لٹریچر، ہر چیز میں اپنا زہر گھولوں گا. اس کی تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت، فیشن، کلچر، سیاست، مذہب، ہر چیز کے اندر جو ہے میں فساد پیدا کروں گا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد آخرت کے بارے میں شک ڈالنا ہے، پیچھے سے مراد انہیں دنیا پر جو ہے وہ دیوانہ بنانا ہے دنیا کے لیے، دائیں طرف سے مراد دین کے بارے میں شکوک پیدا کرنا، اور بائیں طرف سے مراد گناہوں کو مرغوب بنانا. معنی کیا ہے؟ کہ کسی طرح بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بہکاتا ہی رہوں گا، اور کوئی ممکن طریقہ ایسا نہیں ہے جس کو جو ہے میں چھوڑ دوں. اب آپ دیکھ لیں کہ شیطان کی پلاننگ، شیطان کا چیلنج، اور کیسا تھا اس کا دعویٰ کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہ پائے گا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ شاکرین کے ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کہ انہیں شرک میں مبتلا کر کے چھوڑوں گا. جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ توحید پرست ہوتے ہیں، جو نہ شکرے ہوتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. فرمایا اکثر لوگوں کو میں شرک میں مبتلا کر کے چھوڑوں گا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے علاوہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ شیطان کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اس کی چالوں میں، اس کے وسوسوں میں، وہ جو سبز باغ دکھاتا ہے اس پر، وہ غلط راستوں پر جو ہے وہ لوگ چل پڑتے ہیں. پھر فرمایا قال، کہا، کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے. اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، مذعوما مدحورا. مذعوماً جو ہے اس کا روٹ ہے زال، حمزہ، میم، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے عیب، مذمت دار، مذمت کیا ہوا، عیب دار، ناپسندیدہ. تو مذعوماً جو ہے اس کے معنی ہے ذلیل، عیب دار، مذمت کیا ہوا، یہ سب مفعول ہے. مدحورا، دال ہارا اس کا روٹ ہے. اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، کسی کو دھتکار دینا، پرے کرنا، دھکا دینا، رحمت سے دور کرنا. دوسرے معنی ہے کہ एक तो है धुतकारना और दूसरे मानी है कि दूर करना, हटा देना। तो दोनों मुराद है कि उसको धुतकार दिया और उसको रहमत से दूर कर दिया। लानतज़दा, मदहूरा, ठुकराया हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया निकल जा यहां से मज़ऊम, मदहूरा, जलील और ठुकराया हुआ। लमन तबिया का मिनहुम, जो कोई भी पैरवी करेगा इनमें से तेरी, या अमलान जहन्नम मिनकुम अजमाइन, जरूर बे जरूर मैं भर दूंगा इनसे जहन्नुम को, अजमाइन सबके सब, तो तुझ समेत इन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाराजगी का इजहार है कि तुम्हें भी और जो तेरी पैरवी करेंगे तो सबसे मैं जहन्नुम को जो है वो भर दूंगा। फिर इससे क्या बात पता चलती है कि शैतान और उसके वसवसों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आना चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए। वो तमाम मुअव्विज़ात जो है वो, जिससे शैतान से जो है वो बचा जा सके, और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से ऐसी दुआएं मिलती हैं। फिर सूरत नास, सूरत फलक, इसके अलावा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो ऐसी तमाम दुआएं जो है वो पढ़नी चाहिए जिससे शैतान से जो है वो पनाह मांगी जाए, शैतान से दूर रहा जाए और अल्लाह की पनाह में जो है वो आया जाए। वया आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और ए आदम तू उस्कुन ठहर रहो, अंता तू वज़ौजुका और तेरी बीवी हजरत हवा मुराद है, अल जन्नता जन्नत में, फकुला पस दोनों खाओ, कुलान था और नून गिर चुका है तो कुला रह गया, पस खाओ, मिन हैसु शेतुमा, हैसु जहां से, शेतुमा तुम दोनों चाहो, वला तक्रबा हाजही शजरता, मगर तुम दोनों करीब ना जाना इस दरख्त के, तकरा बांध था नून गिर चुका है, बस तुम दोनों करीब ना जाना इस दरख्त के, फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, बस तुम दोनों हो जाओगे जालिमों में से, फतकूनान था, नून यहाँ पे भी गिर चुका है, बस तुम दोनों हो जाओगे जुल्म करने वालों में से, नाफरमानी करने वालों में से। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा जो है उनको हदायात दी जा रही हैं कि एक दरख्त को छोड़कर पूरी जन्नत से जहां से और जितना चाहो खाओ, बस एक दरख्त का फल खाने की पाबंदी तुम पर जो है वो आजमाइश के तौर पर आयद कर दी गई है। और ये नहीं कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, बल्कि इस दरख्त के तुम दोनों करीब भी ना जाना, करीब भी ना जाना। जैसे आप जो है वो बच्चों को बहुत से खिलौने दे दें और खिलौने देने के बाद कहें कि सारे खिलौनों से जितना चाहो खेलो, लेकिन बस इस चीज के पास नहीं जाना, जैसे कोई इलेक्ट्रिक सिटी ही है तो इसके पास नहीं जाना। तो अब यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उनको बता दिया कि पूरी जन्नत से फायदा उठाओ, तुम्हें आजादी हासिल है, बस एक दरख्त का जो है तुम्हारे लिए इम्तहान है कि इनके पास ना जाना, वरना फिर तुम हो जाओगे जुल्म करने वालों में से। फवसवसा लहुमा शैतानु, पस उन दोनों को शैतान ने जो है वो वसवसा दिया, बहकाया। वौसीन, वौसीन इसका रुबाई है, रूटवर्ड, इसके मानी होते हैं जेवर की झंकार, हल्की सी जो आहट होती है, जैसे हवा के झोंके से दरख्त के पत्तों में जो सरसराहट पैदा होती है, सरसराहट, उसके लिए भी वसवस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हल्के से दिल में जो बुरा ख्याल आता है उसको वसवसा कहा जाता है। वसवसा तुन विश्वास, ऐसे ही है जैसे जलजला तुन जिलजाल, पस्त आवाज और नफ्स की बात को कहते हैं। शैतान दिल में जो बुरी बातें डालता है उसको वसवसा कहा जाता है। तो क्या किया कि फवसवसा लहुमा शैतानु, फिर इन दोनों को शैतान ने बहकाया, ये युब दिया लहुमा, ताकि वो इन पर जाहिर कर दे, ये युब दिया बादाल वो, इसके मानी है जाहिर करना, ताकि वो इन पर जाहिर कर दे लहुमा इन दोनों पर, मवूरिया माँ जो वुरिया पोशीदा थी। और इसका रूट क्या है? वो रा या मानी है छुपाना। तो जो छुपाया हुआ था, जो पोशीदा था अनहुमा इन दोनों से, मिन सऊ आती ही माँ इन दोनों की शर्मगाहें, जो सतर की चीजें थी। तो शैतान ने इसलिए इन दोनों को बहकाया ताकि जो इनकी शर्मगाहें पोशीदा थी, वो जो इन दोनों से छुपाई गई थी, इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी इनके सामने, खोल दे। आप देखें कि यहाँ पे सऊआत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, सीन वो हमजा रूट है, सऊआत उन शर्मगाह को कहते हैं और सऊआत इसकी जमा है। तो शर्मगाह को सऊआतुन इसलिए कहा जाता है कि इस शर्मगाह का जाहिर होना जो है इसको बुरा समझा जाता है। सूनी होता जैसे बुराई, तो इसी तरह जो है वो शर्मगाह का जाहिर होना भी बुरा समझा जाता है, तो इसलिए इसको सऊआत कहा जाता है। तो शैतान ने इन दोनों को बहकाया, इनके इनको वसवसा दिया, और इन दोनों को जो है वो इसलिए बहकाया ताकि इनकी वो शर्मगाहें जो इन दोनों से छुपाई गई थी, वो इन पर जो है वो खोल दे। तो अब शैतान ने जो है वो क्या किया, उसने बड़ी दिलफरेब तकरीर की, उसने बड़ी जबरदस्त जो है वो बातें की। मुफस्सरीन कहते हैं कि उसने जो है वो झूठ बोला कि जन्नत में जो नेमतें और आसाइशें हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को हासिल थी, तो शैतान ने उन दोनों को बहकाया और कहा कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में नहीं रखना चाहता, इसलिए अगर इस दरख्त का फल तुम खा लोगे तो तुम इसकी तासीर ये है कि जो खाता है वो फरिश्ता बन जाता है और उसको दायमी जिंदगी नसीब हो जाती है। तो अल्लाह ने तुम्हें मना कर दिया है कि तुम इस दरख्त का फल नहीं खाना, क्योंकि अगर फल खाओगे तो फिर हमेशा जन्नत में रहोगे। तो चूंकि अल्लाह तुम्हें जन्नत में रखना नहीं चाहता, तो इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से रोक दिया है। तो शैतान ने पूरी कोशिश की कि आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को जो है वो अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा करे, और वो दोनों जो थे वो शैतान के बहकावे में आ गए। फकाला शैतान ने कहा, मा नहा कुमा रब्बू कुमा, नहीं मना किया तुम दोनों को तुम दोनों के रब ने, अनहाज ही शजरती इस दरख्त से, इल्ला मगर ये अंतकूना मलकैनी, कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ। मलक एक फरिश्ते को कहते हैं और मलकैन दो फरिश्ते, कि कहीं तुम फरिश्ते ही दोनों ना बन जाओ, और तकूना मिनल खालिदीन, या फिर तुम्हें हमेशगी की जिंदगी ही हासिल हो जाए। तो तुम्हारा रब ये नहीं चाहता कि तुम दोनों फरिश्ते बन जाओ, या फिर तुम दोनों हमेशा जो है वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से जो है वो मना कर दिया है। तो इबलीस ने इनको लालच दिया कि इस दरख्त का फल खाने से या तो तुम फरिश्तों के मर्तबे में आ जाओगे या तुम्हें अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी। वकासमहुमा, और उसने जो है वो कसमें खाई इन दोनों के आगे। मकासमा जो है यहाँ पे बाबे मफालियत से है, इसके मानी क्या है? तकसीर, मुबालगा। तो अकसमा की बजाय कासमा का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या है कि शैतान को अपना एतमाद जमाने के लिए बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी, बार बार कसमें खा खा कर उसने यकीन दिलाया कि वो जो कुछ कह रहा है उसमें कोई बदनीयती नहीं है, बड़ी खैरखाही है। इसलिए यानी अकसमु का मतलब होता है ना, मैं कसम खाता हूं, लेकिन वह कासमाहुमा तो ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जैसे पुख्ता कसम खाना झगड़े की सूरत में, जैसे वो दोनों मान नहीं रहे और कसमें खा खा कर इसने अपने आप को खैरखा होना साबित किया। कि क्या कहा? इन्नी लकुमा लमिनन नासहीन, कि मैं तुम दोनों का सच्चा खैरखा हूँ, सच्ची नसीहत करने वाला हूँ। फदल्लहुमा बिगुरूर, इस तरह उन दोनों को धोखा देकर फदल्लहुमा माइल कर लिया। दाल लाम लाम, इसका रूट है आगाह करना, दलील देना। मुफस्सरीन कहते हैं तदलियतुन इदला जो है इसके माने किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ देना। तो शैतान उनको मरतबा उलिया से उतार कर ममनुआ दरख्त का फल खाने तक ले आया। फदल्लाहुमा, फिर उन दोनों को नीचे ले आया। कहाँ पे ले आया? वो दरख्त का फल खाने पर, क्योंकि अदला दलवा इसके मानी होते हैं कि इसने उसको जिस फ्रेम में मुब्तला करना चाहा था उसने मुब्तला कर लिया, उनको अपने ढब पर लाने में कामयाब हो गया। आप कहते हैं ना जैसे उसको शीशे में उतार लिया, ये है इसके माने। फदल्लाहुमा, फिर उन दोनों को शीशे में उतार लिया, अपने ढब पर ले आया, जिस कसमें खा खा कर यकीन दिलाकर बेगुरूर। और यहाँ पे गुरूर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और गुरूर जो है इसके मानी है धोखे के साथ। कि ऐसे नहीं है कि शैतान ने कहा और वो मान गए, बल्कि उसने धोखे के साथ जो है इनको बहकाया और इनको जो है वो अपने ढब पर वो लाया। फलम्मा जाक शजरता, फिर जब दोनों ने दरख्त को चखा, जाल वौकाफ रूट है, जब दोनों ने चखा दरख्त को, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो खुल गई, जाहिर हो गई लहुमा उन पर, सौआतुहुमा उन दोनों की शर्मगाहें। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा दोनों का जो सतर था वो एक दूसरे के सामने खुल गया। वतफिका, और लगे वो दोनों। तफिका जो है इसके मानी है जैसे कोई काम शुरू करना, तोए फा काफ इसके मानी होते हैं काम को शुरू करना, कोई काम करने लगना। और काफ के बाद अलिफ जो है ना ये तस्निया के लिए है, और इसके साथ नून भी तस्निया का होता है, लेकिन नून यहां पर जो है वो गिर चुका है। वतफिकान, और वो दोनों लगे, उन दोनों ने शुरू कर दिया क्या करना, यख्सिफानी। यख्सिफान जो है इसके मानी है, इसका रूट है खास वादफा, इसका मतलब है जोड़ना चिपकाना, जैसे जूता सीना। अब जूता टूटा हुआ होता है तो उसको सी कर इकट्ठा कर दिया जाए, या जूते में पैवन लगाना। तो तफिका के बाद जो है यख्सिफान जो आया, तो खसफा के मानी है गांठना, गोथना, जोड़ना। अब वो दोनों लगे जोड़ने, दोनों ने जोड़ना शुरू कर दिया, दोनों ने ढांकना शुरू कर दिया। अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना, वो जो उनकी शर्मगाहें थी, जो उनका जिस्म था, उसको जन्नत के पत्तों से जो है वो ढांपना शुरू किया। और वरक जो है ये पत्ते के लिए यहां पर इस्तेमाल हुआ है। वनादा हुमा, और उन दोनों ने पुकारा, रब्बू हुमा अपने रब को, दोनों ने अपने रब को पुकारा, नहीं वनादा हुमा रब्बू हुमा, और तब उन दोनों को उनके रब ने पुकारा। अब दोनों को उनके रब ने कहा, अलम अनहाकुमा अंतिल कुमुल, अलम अनहाकुमा, क्या तुम दोनों को मना नहीं किया था? नूनहा या रूट है अंतिल कुमा, तिलका होता है ये, और तिल कुमा यानी इससे, तुम दोनों को इससे मना नहीं किया था? अशजरती, इस दरख्त से, वा कुल्ला कुमा, और क्या मैंने तुम दोनों को नहीं कहा था, इन्ना शैताना लकुमा अदुव मुबीन, कि बेशक शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब जब उनसे ये गलती हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका नहीं था और ये बताया नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसकी बातों में ना आना। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, वो दोनों बोल उठे, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو نے ہم پر جو ہے اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا, معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ, فرمایا, اِهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. قَالَ, فِيهَا تَحْيَوْنَ, فرمایا وہیں تم کو جینا ہے, وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور وہیں تمہیں مرنا ہے, وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. یہ جو قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے, اس سے چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ان میں سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ جو ہے اللہ نے ڈالا ہے, اور وہ ایک فطری جذبہ ہے, اور انسان جو ہے وہ اپنے جسم کو دوسروں کے سامنے کھولتے وقت جو ہے وہ شرماتا ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس فطری جذبے پر جو ہے وہ حملہ کرے. نمبر ایک, شرم و حیا کا جذبہ فطری جذبہ ہے. نمبر دو, شیطان کی پہلی چال جو انسان کو اس نے سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی وہ یہ تھی کہ اسی جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے اور برہنگی کے راستے جو ہے وہ فحش کا دروازہ کھولے. اب آپ دیکھ لیں جیسے آج کے دور میں بھی کیا ہے کہ ترقی کا نام لے کر عورت کو ننگا کیا جاتا ہے. ترقی, کلچر, ثقافت, ماڈرن, اور سیدھے سیدھے کہا جائے تو کوئی ننگا نہیں ہونا چاہتا, لیکن ترقی کے نام پر, فیشن کے نام پر, کلچر, آرٹ, فن. پھر تیسری بات کہ انسان جو ہے نا برائی کی کھلی دعوت کو کم قبول کرتا ہے, عموماً جال میں پھانسا جاتا ہے. جیسے شیطان نے جال میں پھانسا کہ اس درخت کو کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے یا پھر فرشتے بن جاؤ گے, تو ڈائریکٹ برائی کی دعوت کو انسان قبول نہیں کرتا, ہیر پھیر کر کے انسان کو جو ہے گمراہ کیا جاتا ہے. پھر چوتھی بات کہ انسان جو ہے وہ بلندی پر جانا چاہتا ہے, وہ اونچا اونچا جانا چاہتا ہے. اسی طرح جیسے فرشتہ بننے کی خواہش یا اونچا مقام حاصل کرنے کی خواہش جو تھی, اسی پر شیطان جو ہے بی بی حوا اور آدم علیہ السلام دونوں کو لے کر گیا. لیکن شیطان نے فریب کیا کیا کہ بلندی کی بجائے جو ہے وہ الٹا پستی کی طرف لے گیا. اچھا, پانچویں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ عام طور پر یہ مشہور ہو گیا ہے کہ بی بی حوا جو تھی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا, اور قرآن جو ہے اس بات کی تردید کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکا دیا تھا اور دونوں دھوکا کھا گئے تھے. عام طور پر عیسائیت میں بھی عورت کو گناہوں کی جڑ کہا جاتا ہے, ہندوؤں میں بھی, کہ عورت برائی کی جڑ ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن جو ہے یہ بتاتا ہے کہ دونوں سے غلطی ہوئی تھی, دونوں نے دھوکا کھایا تھا, اور یہ جو عورت کا اخلاقی, قانونی اور معاشرتی مرتبہ گرایا جاتا ہے تو قرآن جو ہے وہ ایسا نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے کہ دونوں سے غلطی ہوئی تھی. پھر چھٹی بات یہ کہ درخت کھاتے ہی جو ان کا ستر کھل گیا تھا, تو یہ نہیں تھا کہ درخت کے اندر کوئی خاصیت تھی, بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی, اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہی جو ہے وہ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے جو فطری طور پر ستر ڈھانپنے کا جو انتظام کیا تھا اپنے پاس سے, تو اللہ نے وہ انتظام, وہ حفاظت ان سے ہٹا لی تھی. اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین, کہ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, بس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر. پھر نمبر سات جو پتہ چلتی ہے یہ کہ شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان کو جو فضیلت دی گئی ہے, مجھ پر جو فضیلت دی گئی وہ اس کا مستحق نہیں ہے, اور اسی لیے شیطان نے یہ ثابت کیا کہ دیکھیں کس طرح یہ آدم اور حوا جو تھے وہ دھوکا کھا گئے. اور آخری بات جو ہے وہ کیا پتہ چلتی ہے कि शैतान जो है वो ये चाहता है कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, और वो आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर तरफ से जो है वो धोखा देता है, तंग करता है, लेकिन शैतान का कहना नहीं माना। तो अब यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि शैतान में और आदम अलैहिस्सलाम में क्या फर्क है। कि शैतान से गलती हुई तो वो अपनी गलती पर जो था वो अकड़ गया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, बीवी हवा से गलती हुई, उस पर वो नादिम और पशेमान हुए, अल्लाह से तौबा इस्तगफार की और अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक हो गए। तो शैतान का तरीका क्या है कि गुनाह करके उस पर इतराना, नंबर दो इसरार करना, और सही साबित करने के लिए दलाइल देना, दलाइल के अंबार लगाना, ये शैतानी राह है। और आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता और बीवी हवा का रास्ता क्या है कि गुनाह के बाद एहसास नदामत से मगलूब होकर बारगाह इलाही में झुक जाना, तौबा इस्तगफार का एहतमाम करना। तो ये कौन सा रास्ता है? ये अल्लाह के बंदों का, अल्लाह के नेक बंदों का जो है वो रास्ता है। और शैतान ने क्या किया? किब्र किया, क्योंकि पीछे भी आपने जो है ये बात पढ़ी, ये आयत नंबर 13 में, कि अंत तकबरा फीहा फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन। तो अब हमें क्या करना है? हमें तकबर से जो है वो बचना है, क्योंकि जो जर्रा बराबर जिनके अंदर तकबर पाया जाता है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो तकबर किसे कहते हैं? तकबर जो है वो अपने आप को बड़ा समझना और अपने हसब या नसब को, अपनी जात को या इल्म की बिना पर अपनी बड़ाई का ऐलान करना, या मुख्तलिफ जो भी इंसान के पास अल्लाह का दिया हुआ माल है, दौलत है, कुर्सी है, इक्तदार है, तो उसकी वजह से इंसान अपने आप को कुछ समझने लगे और जो है वो क्या करे कि फिरौन बन बैठे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग मुझे ज्यादा महबूब हैं और जो कयामत के दिन मुझसे ज्यादा करीब बैठने वाले होंगे, वो लोग हैं जो तुम में ज्यादा अच्छे इखलाक वाले हैं, और तुम में से जिनसे मुझे सबसे ज्यादा दुश्मनी है, और जो कयामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा दूर होंगे, वो लोग हैं जो बहुत बक बक करने वाले हैं, और जो जबान दराज है, और जो छलकने वाले हैं। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बक बक करने वाले और जबान दराजी करने वालों को तो हम जानते हैं, मगर छलकने वाले कौन लोग मुराद है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकबर करने वाले हैं, ये अपने आप को बड़ा समझने वाले हैं। फिर इससे क्या बात पता चलती है कि अपने अंदर आजजी और इनकिसारी जो है वो पैदा करनी चाहिए, क्योंकि किब्र करना जो है ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। और ये हदीस बड़ी ही खूबसूरत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊंटनी थी जिसका नाम अदबा था, ऐन दाद बा अलिफ हमजा, कोई जानवर इससे आगे नहीं बढ़ सकता था। फिर एक अराबी आया जो अपने नर ऊंट पर सवार था, वो ऊंट अदबा से आगे बढ़ गया। मुसलमानों को ये बात बहुत शाक गुजरी और वो कहने लगे कि अदबा पीछे रह गई। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि दुनिया की जिस शय को भी बुलंद करे उसे फिर कभी पस्त भी कर दे। तो क्या मतलब है इसका? इसके माने ये हैं कि हर उरूज को एक जवाल है,